ओम शांति। आज का टॉपिक है सिंधी कहावत। 24 तारीख को सबने मुरली सुनी होगी। कौन सी कहावत थी और सिंधी में क्या बोलेंगे उसको? सवेल सुमन, सवेल उत्थन और सवेल धनी जो नाल बैठन। ये आगे मुरली है, अर्थात जो समय पर उठता है, समय, यहाँ टाइम मैनेजमेंट है और हमारे थॉट सिस्टम की मैनेजमेंट है कि जो सवेरे सवेरे उठते हैं, टाइम को सफल करते हैं, उनका सारा दिन कैसे बीतता है। हम सब जानते हैं भक्ति मार्ग में भी सवेरे के टाइम का कितना महत्व है। भक्त लोग भी सवेरे सवेरे उठकर भगवान के साथ बातचीत करते हैं, मंदिर में जाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, स्वयं की सफाई, स्वयं के मन की सफाई करते हैं, स्वयं के विचारों को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो भक्ति मार्ग में भगवान के प्रति भक्तों का कितना प्यार होता है, जबकि भगवान से उतना उनका परिचय नहीं होता है, उनका उनके साथ उतना रिश्ता नहीं होता है। दूरियां होने के बावजूद भी भगवान के प्रति कितना निष्ठापूर्वक उनका प्यार होता है, समर्पण भावना होती है, अपने नियम मर्यादाओं पर कितना खरा उतरते हैं। तो हम सब ब्राह्मणों को बाबा ने अमृत वेले का, सुबह के टाइम का महत्व बताया है। तो ये सवेरे का जो टाइम है, हमको कैसे सफल करना है? जो संसार में कई महान विभूतियां हुई हैं, जिन्होंने अमृत वेले के समय को बहुत महान बना माना है, आध्यात्मिक कैसे पुरुष हुए हैं, आध्यात्मिक विभूतियां हुई हैं जिन्होंने सवेरे के समय के ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, अगर सुबह के टाइम को मुझे सफल करना है तो मुझे कौन से विचार करने हैं? तो बताया गया है, अगर मैं परमात्मा के गुणों का विचार करूं, उनके मन नाम का जाप करूं, तो मेरी स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी। जो मन रूपी धरनी पर परमात्म संकल्पों का बीज बूं, तो सारे दिन में उसका जितना मर्जी खर्च करो खत्म नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा। और इसी तरह गुरु अर्जुन देव जी ने भी कहा है कि सवेरे आकर अगर मेरे साथ कोई परमात्मा के नाम की, प्रभु के नाम की चर्चा करे तो मैं उसके चरण धोकर पीऊंगा। ऐसे और कहा है, अगर सवेरे सवेरे भगवान के नाम की चर्चा करते हैं, उसके सिमरन करते हैं, तो वो सारे दिन की बाजी जीत लेते हैं। सारे दिन में अर्थात हर कर्म जो भी करेंगे तो सफलता परछाई की तरह उनके पीछे समाई रहेगी। तो भक्ति में भी अमृत वेले का बहुत सारा महत्व है। तो बाबा जो हमको कहते हैं कि सवेरे का जो समय है कैसे पूरा सफल हो, क्योंकि हमारा फाउंडेशन है। वैसे तो बाबा कहते हैं अमृत वेला सारा संगम योग ही अमृत वेला ही है, लेकिन विशेषकर फिर भी सारे दिन में बहुत बखेरे होते हैं, बहुत गोरख धंधे होते हैं, जो विचार बिखर जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन मॉर्निंग का समय ऐसा है, अगर मैं इसके महत्व को जानकर फुल चार्ज हो जाए, इसका पूरा सदुपयोग कर दें, तो ये हमारे लिए एक जैसे संजीवनी बूटी का काम करता है। फिर दिन में जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी प्रॉब्लम है, परिस्थितियां, विघ्न सरकमस्टांस आते हैं, तो उनमें भी हमारी स्थिति अचल अडोल रहती है। तो अमृत वेले हमारा जो मन है स्थिर रहे, शांत रहे, दत्तचित होकर हम उसको जो जिस उद्देश्य से बैठे हैं उस उपलब्धि को हासिल कर सके, उसके लिए क्लैरिफिकेशन अति आवश्यक है। अगर स्पष्टीकरण नहीं है तो जो हमारा ये फाउंडेशन है ये हिलता जुलता रहता है, एकाग्र नहीं हो पाएंगे तो फिर वो नीरस नीरस अनुभव करेगा। भले हमने किया है, लेकिन जो शक्तिशाली होना चाहिए, उसके जो सार्थक परिणाम निकलने चाहिए, जो जीवन में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए, बदलाव दिखाई देना चाहिए, स्वयं को भी और दूसरों को भी, जो हमारी चाल चलन में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए, अगर वो नियम पूर्वक चलते हैं, उसके भी मार्क्स होते हैं, लेकिन नियम के साथ साथ उन नियमों को विधि पूर्वक पालन करने से उन नियमों में बल भर जाए, केवल नियम नियम मात्र न रहे, बल भर जाए, उसके लिए पहले से पूर्व तैयारी, सवेरे के टाइम में हमको क्या करना है, सारे दिन में क्या क्या अटेंशन रखना है, या अमृत वेले या सवेरे के टाइम में कौन सी हमको चुनौतियां आती हैं योग में, विशेषकर दूसरों से जो चुनौतियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनसे निपटना सहज होता है। लेकिन जो स्वयं के स्तर पर तैयार की गई परिस्थितियां हैं या मन में जो अनेक प्रकार की समस्याओं का जो भंवर जाल है, मनुष्य अधिकतर स्वयं उसी में फंसा रहता है। तो पहले तो हमको स्वयं को स्वयं से ही निपटना है, स्वयं को स्वयं के बंधनों से मुक्त करना है। अन्य बंधनों से मुक्त होना आसान है, लेकिन जो स्वयं के बंधन हमने पाल रखे हैं, जिनको छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमको उन बंधनों से कुछ प्यार हो गया है और प्यारी चीज छोड़ती नहीं है। तो अमृत वेले सबसे पहली चुनौती कौन सी होती है? हाँ जी, नींद की चुनौती। सबसे पहले तो हमको नींद चुनौती करती है, माया जो है नींद के रूप में चुनौती देती है कि इतना अच्छा समय है, इतनी अच्छी मीठी मीठी नींद आती है ना, और उठना होता है, तो वो नींद जो है ना खींचती है अपनी तरफ। तो हमको पहले उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों हमको नींद खींच रही है। या तो हम पर्याप्त नींद नहीं कर पा रहे, ऐसा भी नहीं है कि हमको नींद कम करनी है, नींद भी अगर हमारी पर्याप्त होगी तो ही हम योग भी ठीक कर सकेंगे। अगर नींद ठीक नहीं है तो फिर शरीर तो नींद मांगेगा और वो पूरी करेगा। तो सारे दिन में अगर थोड़ा हमने रेस्ट नहीं की है, या चलो जो बिजनेस में जाते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, नहीं मिलता उधर टाइम, तो रात को बाबा कहते हैं जल्दी सोना जल्दी उठना, तो रात्रि जो नींद है 10 बजे बाबा कहते हैं सो जाओ। तो 10 बजे सो के अगर आराम से 2 बजे, जो बाबा ने कहा 2 बजे नहीं उठो कोई बात नहीं, 3 बजे उठो, 3 बजे के बाद नहीं उठते तो 4 बजे उठो। अगर हम पौना घंटा भी फुल चार्ज हो जाए, आत्मा एकदम भरपूर हो जाए, खुशी से भरपूर हो जाए, तो आत्मा को पंख लग जाए उठने के, तो हमारा दिन भी ठीक रहेगा। तो इसके लिए पहले तो हमको पहले स्थूल रूप से देखना पड़ेगा कि कौन सा समय है जो हम रेस्ट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास टाइम है और हम नहीं कर रहे हैं, या तो उस टाइम को कहीं किसी और के लिए दे रहे हैं जहां हमको नहीं देना चाहिए, उन बातों में हमारा टाइम जा रहा है, तो वो खर्च हो रहा है, हमारी एनर्जी वेस्ट जा रही है। वैसे भी कहते हैं ना, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड, ये सवेरे सवेरे हमारे खाते में जमा होता है। तो रोज अगर हमारे खाते में 86,400 रुपए जमा है, और उसका कंडीशन है कि वो खर्च करना, तो ही हमको उसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। अगर हम उसको खर्च नहीं करते हैं तो गए वापस नहीं आएंगे, वो उसका प्लस नहीं मिलेगा कुछ भी। वो खर्च करने हैं तो खर्च करने से बढ़ेगा, इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान धन खर्च करो। तो 86,400 सेकंड है हमारे पास में, तो उन समय का हम सदुपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। बाबा कहते हैं एक एक सेकंड बहुत अमूल्य है, अनमोल है, तो वो हमारा समय कैसे चला जा रहा है। ज्ञान धन काली बोला बाबा ने, पूछ के करने ही नहीं है। तो सबसे पहले ज्ञान दान किसको करना होता है, ज्ञान दान का दान किसको करना होता है, पहले अपने आप को करना है, जैसे मुरली सुनाई अरविंद भाई ने, तो ये सारा पहले अपने आप को दान करना है। अगर हमारे पास ही नहीं है तो दूसरों को दान कैसे करेंगे। तो ज्ञान दान को बढ़ाने के लिए ये जो समय मिला है सारे दिन में, उसको हमको एकत्रित करके स्वयं को जो बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्नों को बाबा कहते भर लेना है, ताकि वो हम दूसरों को बांट सके। तो समय का सदुपयोग अगर सही तरीके से नहीं हम कर पा रहे हैं तो भी हमारी खुशी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो है आलस्य का प्रकोप, अर्थात नींद की चुनौती होती है, कैसे सुस्ती भी प्रहार करती है सवेरे सवेरे। तो हमको स्थूल रूप से चेकिंग करनी है, या तो हमारा कहीं ना कहीं खान पान स्थूल रूप से वो ठीक नहीं है, या तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम वेस्ट ऐसे चला जा रहा है जहां हमारा टाइम नहीं जाना चाहिए, ऐसे हम खर्च कर रहे हैं, संबंध संपर्क में आ रहे हैं, हमारी एनर्जी खत्म हो रही है, तो वो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो स्थूल दिनचर्या के स्थूल नींद के साथ हमारी एक सूक्ष्म नींद है, तीन प्रकार की चुनौतियां हैं, एक तो है स्थूल नींद, दूसरी है विस्मृति की नींद। ज्ञान तो है हमको लेकिन विस्मृत हुआ पड़ा है, और मॉर्निंग में अधिकतर अमृत वेले ही होता है। जैसे ज्ञान की विस्मृति होती है, माया आलस्य के रूप में प्रहार करती है। हम सभी इस चीज के अनुभवी होंगे, जब जब श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, शुद्ध संकल्प चलते हैं, तो नींद नहीं आती है। बाबा ने बताया ना, कमाई में नींद थोड़ी नहीं आती है, कल की मुरली में था तो कमाई में तो और ही खुशी रहती है। तो शुद्ध संकल्पों की जो सरिता है, शुद्ध संकल्पों की गंगा है, वो हमारे मन में निरंतर बहती रहनी चाहिए। शुद्ध संकल्पों का झरना निरंतर बहता रहना चाहिए सारे दिन में। तो विस्मृति की निंद्रा से मुक्त होने का यह साधन है, शुद्ध संकल्पों का, प्योर थॉट्स का। हम कितना उनको निर्माण कर पा रहे हैं नए नए तरीके से। एक तो है मुरली से हम एज इट इज उठा के उनको चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उन संकल्पों को अपने तरीके से, अपनी सुविधा अनुसार, जिस तरीके से हम सहज रूप से उनको अप्लाई कर सकें, उस तरीके से बनाना है। जैसे कई बार हम सम्मान पर चर्चा करते हैं, जैसे एक ही सम्मान ले लेते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये शुद्ध संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है, बहुत ऊंचा संकल्प है। अगर हम केवल इसी संकल्प पर फोकस करते हैं तो कुछ देर तक लगता नहीं है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो इसको कुछ अपने तरीके से, नए तरीके से हजम करने के लिए, जो सहज रूप से हजम हो सके, स्वीकार हो सके, वो काम करे वो संकल्प, तो अपने तरीके से उसको अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे उसको अपने तरीके से अप्लाई? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो इसको 15-20 तरीके से, अलग अलग तरीके से यूज करना है। जैसे सर्वशक्तिवान बाप की सर्वशक्तियों का झरना मुझ आत्मा पर बह रहा है, सर्वशक्तियों की रोशनी से मैं आत्मा प्रकाशित हो रही हूँ, सर्वशक्तियों की करंट मुझ आत्मा में जा रही है, सर्वशक्तियों का झरना बरसात, सर्वशक्तियों की बरसात के नीचे मैं आत्मा नहा रही हूँ। ऐसे अलग अलग संकल्पों से एक ही सोमान को अगर हम चिंतन करते हैं तो आत्मा प्रफुल्लित रहती है और सारे दिन में उसका फिर प्रभाव रहेगा। सर्वशक्तियों की, आजकल गर्मी बहुत है तो हम स्थूल में भी जुड़ सकते हैं, सर्वशक्तियों की एसी के बीच सामने में बैठा हुआ हूँ तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जो भी हमारे क्रोध रूपी संकल्प है वो समाप्त होते जा रहे हैं, तो स्थूल चीजों भी जोड़ सकते हैं। सर्वशक्तियों की सोफे रूपी सीट पर मैं बैठा हुआ हूँ, है ना, सर्वशक्तियों की वाइब्रेशन मेरे मुख से निकल रहे हैं, सर्वशक्तियों के वाइब्रेशन मेरी आंखों से निकल रहे हैं, सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा से प्रभावित हो रही हैं, सर्वशक्तियों के प्रकंपन चहुं और मुझ आत्मा से फैल रहे हैं। तो एक ही संकल्प को भिन्न भिन्न तरीके से, जैसे आलू है, अगर आलू को एक ही तरीके से खाएंगे रोज रोज क्या होगा? तो आलू की चिप्स या आलू के दूसरे दूसरे वैरायटी बनाते हैं तो हम फिर उसका अनुभव अच्छा ले सकते हैं। तो जो भिन्न भिन्न सोमान होते हैं, भिन्न भिन्न संकल्प हैं, जो शुद्ध संकल्पों की जो गंगा है निरंतर अलग अलग तरीके से बहती रहेगी, तो उस गंगा में स्नान करने से हम तरोताजा रहेंगे। जैसे हम विस्मृत होते हैं, ज्ञान से विस्मृत होते हैं, तो फिर मुरझाई आएगी, उदासी आएगी। अधिकतर कारण तो यही होता ना, जैसे हम ज्ञान से विमुख हुए, जैसे विस्मृत हुए या कोई ना कोई सोमान से विस्मृत हुए, तो जीवन में निरस्ता आती है, उदासी आती है, नवीनता का अनुभव नहीं होता है। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में नवीनता का होना अति आवश्यक है, ताकि हम इस अमृत वेले का पूरी तरह से फायदा ले सके। और अमृत वेले हमको बड़े संकल्प रचने हैं, छोटे छोटे संकल्प नहीं रचने, क्योंकि कहा जाता है जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं। जो हमारे विचार हैं वही विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन शैली में बदलाव लाते हैं। तो सवेरे सवेरे ऊंचे ऊंचे सोमान करने हैं, ऊंचे ऊंचे सोमान, ऊंचे ऊंचे विचार। संसार में देखेंगे हम जितने भी महान आत्माएं हुई है, जैसे स्कूल में जाते हैं तो एक टीचर स्कूल में तो कई बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसी स्कूल के बच्चे कोई बहुत हाई स्टेटस पर चले जाते हैं, बहुत ऊंचे पद पर चले जाते हैं, और कोई नीचे रह जाते हैं, कोई साइकिल पंचर वाले बन जाते हैं। तो वास्तव में टीचर तो सबको समान पढ़ा रहा है, लेकिन जरूर उस स्टूडेंट में, उस विद्यार्थी में कुछ सोचने का नया तरीका है। उसने जो टीचर की जो पढ़ाई पढ़ी है, जरूर कुछ उसने नए तरीके से उसको उठाया है, जरूर उसने कुछ उस पढ़ाई से अपना अलग से सोचकर आगे बढ़ा है। जैसे हम देखते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, तो वो बचपन में स्कूल जाने के बाद न्यूज़पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बांटते थे, और धीरे धीरे कैसे कैसे, तो वो काम उनका भले छोटा रहा लेकिन विचार बहुत बड़े रहे होंगे, तो विचारों के आधार पर उन्होंने उस स्टेटस को प्राप्त किया, कितने बड़े साइंटिस्ट बन गए। ऐसे हम देखते हैं जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने जो अपने बिजनेस शुरू किया था, घर के एक छोटे से कमरे से शुरू किया था, और आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जिसको कहते हैं, कैसे बड़े बन गए? तो मनुष्य महान विचारों से बड़ा बनता है। तो सबसे पहले हमें अपने मन रूपी धरनी पर ऊंचे से ऊंचे विचारों का बीजारोपण करना है। अगर उन विचारों का बीजारोपण नहीं करेंगे तो फल भी वैसा निकलेगा। अगर बड़े बड़े विचार, महान विचारों का बीज बोएंगे तो जरूर फसल भी वैसी होगी। कोई डॉक्टर बनता है, अगर उसका एम है कि मैं ठीक है छोटा मोटा डॉक्टर बनूंगा तो वैसा बनेगा। अगर उसने एम रखा है कि मैं वर्ल्ड का फेमस डॉक्टर बनूंगा, तो उनके लक्षण भी, उनकी मेहनत, उनकी पढ़ाई, उनका परिश्रम, उनकी जो भी सुख सुविधाओं का त्याग, उसी अनुरूप होगा, उसी अनुरूप उनकी विचारधारा होगी, उसी अनुसार उनकी जीवन शैली होगी, तो वर्ल्ड का फेमस डॉक्टर बनेगा। चलो नहीं भी बनता है तो कम से कम एशिया का डॉक्टर बनेगा, बनेगा तो जरूर ना। तो उससे अच्छा, वो बड़ा डॉक्टर बनने से फिर फायदा भी किया है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। वो बड़ा डॉक्टर है तो बड़ा हॉस्पिटल खोलेगा, अब बड़ा हॉस्पिटल खोले तो क्या होगा, उसमें पेशेंट भी अच्छे अच्छे आएंगे और उसमें बहुत सारा स्टाफ होगा, उस स्टाफ को रोजगार भी मिलेगा। तो कितना सारा एक ही वो संकल्प से कितना बड़ी धरनी तैयार होगी, और उस धरनी, वो हरी भरी धरनी, वो फलदायक धरनी, वो कितना फायदा दे रही सबको। इस तरह कोई इंजीनियर बनता है तो फिर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है। लेकिन कई बार अधिकतर ये भी होता है, जिस क्षेत्र में मनुष्य उतरता है सोचता मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन ये तो आजकल तो बहुत सारे इंजीनियर हैं, मैं कहाँ एडजस्ट हो पाऊंगा। तो ये भी कहीं ना कहीं हीन भावना हमको पीछे खींच लेती है, सोचते हैं इस लाइन में स्कोप नहीं है कोई भी, इस लाइन में तो पहले से बहुत सारे ऑफिसर हैं, पहले से सारी सीटें भरी जा चुकी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम उस क्षेत्र में उतरते हैं तो कुछ नवीनता, कुछ रचनात्मक तरीके से, कुछ नए तरीके से, कुछ नया कर सकते हैं। जैसे मुरली तो हम सुनते थे, पहले भी सुनते थे, रोज भाई मुरली सुनते थे, लेकिन 108 मेथड निकल गए हैं। अब 108 मेथड जो है हमारी, वो बुद्धि को हलचल में ला दिया। नहीं तो पहले क्या, हम सोचते थे ये सारी किताबें बनी हुई हैं, किताबें तो बनी हैं, क्या करना है इसको, रोज की वही बातें हैं। जैसे अमृत वेला ही है, ये सुना हुआ, बहुत सारी क्लासेस सुनी है, कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। तो अमृत वेले पर क्या बोलना, सबको पता है क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या मुसीबतें आती है। ये सोच के हम पीछे कदम खींच देते हैं, किताब बनी है, सारी किताबें बनी है, अलग अलग विषयों पर किताबें बनी है, अभी क्या लिखने की जरूरत है, क्या अलग से चिंतन करने की जरूरत है, चिंतन तो बना हुआ है। लेकिन बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, जरूर बाबा हमको नए तरीके से उस विचार को प्रस्तुत करने के लिए कुछ नई प्रेरणा देंगे, समय अनुसार, जो समय चल रहा है उसी अनुसार कुछ नई, जैसे नई नई बीमारियां निकलती तो दवाई भी नई नई करती। अगर सोचेंगे, डॉक्टर सोचा कि पुरानी दवाई रखेंगे, बीमारी नहीं है, और दवाई की इन्वेंशन नहीं करे तो क्या होगा, फिर दवाई तो नई इन्वेंशन करनी पड़ेगी ना। तो उसी तरह से मन में भी अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, तो मनोविकृतियां हैं, उन मनोविकृतियों को समाप्त करने के लिए ये ज्ञान की भी नई नई दवाइयां चाहिए, नए नए इंजेक्शन चाहिए। तो नए तरीके से हमको ज्ञान को अमल में लाएंगे हम, तो जीवन में एक रोचकता बनी रहेगी, नवीनता बनी रहेगी, उमंग उत्साह बने रहेगा, खुशी बनी रहेगी। जैसे बताया ना बाबा ने उस समय परसों की मुरली में 24 तारीख की, कि सवेरे उठने से 8 फायदे होते हैं। कौन कौन से 8 फायदे थे, कि सवेरे का समय बड़ा फर्स्ट क्लास टाइम होता है, शरीर बनना बहुत सहज होता है, वातावरण बहुत शांत होता है, और खुशी होती है उस समय, कमाई होती है, सन्नाटा होता है सारा, बाप से बात कर सकते हैं, वो एनर्जी, वो वातावरण से, वो एकदम शांत वातावरण में हम जो चाहे कर्म कर सकते हैं। तो नए नए तरीके से अगर ज्ञान को हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे तो ब्राह्मण जीवन का सुख अनुभव नहीं होगा। और देख रहे जिस तरीके से परिस्थितियां बढ़ती जा रही दिन प्रतिदिन, ज्ञान को भी हमको उसी तरीके से नए नए तरीके से बढ़ाते जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर पुराने डर्रे पर चलते रहेंगे हम, तो फिर जीवन में वो मजा नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा, इंद्रिय सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमारे विचार, हमारे संकल्प शक्ति बहुत ऊंची होनी चाहिए, छोटे विचार नहीं। ऐसा नहीं कि बाबा जो सुमान दे रहे हैं वो ठीक है चल रहा है, नहीं नहीं, उनको हमको नए तरीके से अपना बनाना है, नए विचारों को नए तरीके से अप्लाई करने की, हमको अपने अपने कर्म क्षेत्र रहते हुए किन किन परिस्थितियों में हमको गुजरना पड़ता है, उससे हम खुद अपनी तरह से भलीभांति परिचित हैं। तो उस तरीके से हमको इस ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है, स्थूल चीजों से ज्ञान को कैसे जोड़ना है, तो हमारा योग जो निरंतर बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि सवेरे या शाम का टाइम हमारा योग है, हमारा जीवन निरंतर योगी जीवन है। तो निरंतर योगी जीवन बनाने के लिए इस ज्ञान की निरंतर अविरल रूप से धारा बहती रहे, शुद्ध संकल्पों की गंगा, शुद्ध संकल्पों का सागर हमारी बुद्धि में हलचल करता रहे, तो नए नए तरीके से ज्ञान को हमको अप्लाई करने की युक्तियां रचनी है। बाबा कहते हैं जो संगम युग का बहुत छोटा सा जन्म है, हम सब इसको भी जानते हैं, बाबा ने हम सबको बताया एक एक समय एक एक सेकंड कितना अमूल्य है, और ये हमारा सेकंड बिना खुशी के चला जाए भगवान का बच्चा बनने के बाद भी तो क्या हाल होगा फिर, तो ये जीवन तो खुशियों से भरा होना चाहिए ना। तो इन चीजों का कुछ हमको ध्यान रखने की जरूरत है। सवेरे का टाइम जो है हमारा योग जो है शक्तिशाली होना चाहिए, ज्वालामुखी योग होना चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले चर्चा की थी मुरली में 10 बातों के लिए, निरंतर उन 10 बातों का अगर हम सारे दिन में ध्यान रखेंगे तो अमृत वेला बहुत शक्तिशाली होगा। और वो 10 बातें थी कि धुन लग जानी चाहिए, कौन सी, कि अब वापस जाना है। तो जैसे हम ये संकल्प करते हैं, विचार करते हैं, तो हमारे जो मन है वो मन फिर हमारा घर की तरफ चला जाएगा, और फिर घर के बारे में सोचना है कैसा मेरा घर शांति धाम है, वहाँ कैसी लाइट है, कितनी शांति है, मैं बाबा के पास वहाँ कहाँ बैठा हुआ हूँ, बाबा मुझे कैसे मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, ज्योति बिंदु श्री बाबा कैसे मुस्कुरा रहा है, वो मेरे से कैसे चिपक गया है, हम दोनों परमधाम में रेस कर रहे हैं, ब्रह्मांड जितना मेरा भगवान से प्यार है, जो कल परसों बाबा ने बताया ना याद प्यार नमस्ते में क्या चीजें बताई थी, दो हे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्करधारी बच्चे पूछो अपने आप से कि मेरा प्यार भगवान से आसमान जितना है या ब्रह्म तत्व जितना है, तू कितना है, दोनों जितना है, दोनों मिला लो। तो ऐसे नए नए तरीके से हमको विचारों का संग्रहण करना है बुद्धि में, ताकि इस जीवन का हम सुख ले सके। तो धुन लग जानी चाहिए घर वापस जाने, घर जैसे घर का संकल्प आए तो वो घर याद आना चाहिए। और उसमें 3 शक्तियां बताई थी, पावर टू टर्न, जो भी हमारे संकल्प आते हैं, कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, तो उन परिस्थितियों में भी हमें अपने संकल्पों को मोड़ने की जो है प्रक्रिया, मोड़ने की टेक्निक, वो भी हमको सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं उसी संकल्प को हम पकड़ के बैठ जाएं, परिस्थिति आई है उसी में उलझते रहे और वही परिस्थिति हमारे सारे टाइम को खा के चली जाए, फिर बाद में देखा तो झोली खा ली। तो उन परिस्थितियों में भी हमने अपने संकल्पों को कैसे टर्न करना है, कैसे मोल्ड करना है, सबको अपने अपने तरीके से हम जानते हैं। तो पावर टू टर्न, फिर पावर टू ब्रेक, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है। अगर परिस्थिति आएगी है तो बाबा कहते फुल स्टॉप लगा दो, लेकिन फुल स्टॉप इसके लिए बाबा ने कहा योग का बल बहुत जरूरी है। योग का बल नहीं होगा तो आत्मा उसी भंवर जाल में फंस जाएगी और सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, ज्यादा संकल्प चलेंगे। इसलिए संकल्पों को बाबा ने कहा धैर्यवत संकल्प होने चाहिए। कुछ दिन पहले मुरली थे ना, धैर्यवत संकल्प, धैर्यवत संकल्प होंगे तो वो सिद्धि स्वरूप संकल्प होंगे, थोड़े संकल्प चलेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं फिर एक के बाद एक एक और लाइन लगती जाती है और सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और फिर माथा खाली खाली भारी भारी लगेगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ये पावर टू ब्रेक, फिर पावर टू पैकअप, हमने कितना विस्तार करके रखा हुआ है, हमें अपने विस्तार को भी समेटना है, विस्तार को बढ़ाना नहीं है। लौकिक संसार से तो विस्तार सिमट रहा है, लेकिन अलौकिक संसार में कहीं हमारा विस्तार बढ़ता तो नहीं जा रहा है। कोई हमारे संबंध संपर्क में आ रहे हैं, थोड़ा सा किसी ने अगर सहारा दिया तो बस उसी के पीछे तो चले जा रहे हैं। तो हमको वो बहुत जरूरी है, पावर टू पैकअप। फिर न्यारा प्यारा भी तभी रह सकते हैं अगर समेटेंगे सब चीज को। जितना न्यारा रहेंगे, डिटैच रहेंगे, उतना हमारा मन बुद्धि भी ऊपर की तरफ जाएगा। इसी संसार की वस्तुओं से, व्यक्तियों से, पदार्थों से, साधनों से हमारा मन अगर अटैच है तो वो खींचेगा, फिर ऊपर उड़ेंगे कैसे। तो हमको डिटैच भी रहना है। और याद की स्पीड, बाबा ने कहा याद की स्पीड को ही बढ़ाना है। धीरे धीरे हमारी जो याद की यात्रा है धीरे धीरे बढ़ती जानी चाहिए, 2 मिनट 3 मिनट। बाबा ने कुछ साल पहले कहा था 99 के मूल्य में जितना भी समय मिले अपने कर्म के अनुसार, अपने दिनचर्या के अनुसार 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, थोड़ा 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 सारे दिन में, कहते हैं ना उस दिन किया था ना बताया था ना कि नशा, ये नशा हमेशा लेते रहना चाहिए। जैसे जो शराबी होता है, हाईटेक शराबी, ऊंच क्वालिटी का शराबी जो होता है, तो वो थोड़ी बहुत ऐसे नहीं कि सवेरे शाम पीता है, बीच बीच में लेते रहते हैं। तो ऊंच क्वालिटी का हमको नशा ही चढ़ाते रहना है। जो ज्ञान के छोटे छोटे पैग कहें या छोटे छोटे जो है सामान है, छोटे छोटे टिप्स हैं, ये हमको बीच बीच में लेते रहने चाहिए। ये हमको खुद ही क्रिएट करने हैं, अपनी घोट तो न छट रहे। एक है दूसरे का बनाया हुआ भोजन, वो भी तो स्वाद लगता है, लेकिन अपने भोजन में नमक ज्यादा हो तो भी अच्छा लगता है। तो अपना भोजन जरूरी बनाना है, वो खाएंगे तो ज्यादा असर करेगा, क्योंकि अपने भोजन बनाए पर कोई प्रश्न उत्तर नहीं होगा, दूसरे वाले बनाएंगे तो उस पर कुछ तो हो सकता है कि ये बात ठीक नहीं कही है इसने, लेकिन अपनी जो होती है वो तो ठीक लगेगी ना। तो इसलिए अपने आप का अपना चिंतन, हाँ दूसरे के चिंतन का सहारा लेना जरूरी है, लेकिन अपना चिंतन भी करना अति आवश्यक है, ताकि जीवन में नशा उमंग उत्साह बना रहे। तो याद की यात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते रहना है, स्पीड स्पीड भी हमारी थोड़ी फास्ट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं योग लिंक टूट रहा है बीच बीच में, बैठे तो बस लंबे समय तक वो निरंतर हमारा गतिमान रहे, और फिर एकाग्रता, ये चीजें करेंगे धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ती जाएगी, अपने आप एकाग्रता बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिकली आत्मा जब अतींद्रिय सुख से प्रफुल्लित होने लगेगी तो निरंतर लंबे समय तक हम अपनी साधना में आनंद ले सकते हैं, जीवन का आनंद ले सकते हैं। और भी अमृत वेले से स्थूल सूक्ष्म बहुत सारी बातें हैं, तो ये आप सभी अपने आप को चिंतन करना है। ओके, ओम शांति।